आंखों में हैरानी लिए कई सवालों के साथ राधिका जवाब के इंतजार में उसे तकने लगी। उसका सवाल सुनकर माधव ने रेस्टोरेंट की ओर इशारा करते हुए सहजता से जवाब दिया, जी ये मेरा ही रेस्टोरेंट है, आपको कार्ड दिया था। राधिका को एकदम से उस विजिटिंग कार्ड का ध्यान आया जिसे उसने ले तो लिया था, पर उस मुलाकात को महीने से ऊपर का वक्त बीत जाने के बावजूद उसने न तो उसे दोबारा देखा और न ही पढ़ने में कोई दिलचस्पी दिखाई। ओह सॉरी, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। अपनी गलती का भान होते ही वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई। कहाँ सोचा था उसने कि एक बार फिर ऐसे अचानक उससे मुलाकात हो जाएगी। अब भी वो कुछ हैरान परेशान लग रही थी जबकि माधव सहज लग रहा था। इट्स ओके, आइए अंदर चलकर बैठिए। नहीं मैं ठीक हूँ, बस बारिश रुकने का इंतजार कर रही हूँ, अभी तो घर जाना है, कभी और आऊंगी। राधिका ने बड़ी सौम्यता के साथ माधव के ऑफर को ठुकरा दिया। उसका बस चलता तो वो यहाँ से अभी गायब हो जाती, फिर अंदर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। बारिश को देखकर लगता नहीं कि अभी रुकेगी। इस भारी बरसात में कब तक ऐसे यहाँ खड़ी रहेंगी आप, भीगी हुई भी हैं। अंदर चलकर आराम से बैठिए, बारिश थमेगी तो चली जाइएगा। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, ऐसे अंदर जाना ठीक नहीं है, वैसे भी मुझे कुछ खाना पीना नहीं है तो अंदर जाकर क्या करूँगी। राधिका का इशारा अपने भीगे कपड़ों की ओर था, कुछ संकोच, झिझक और हिचकिचाहट थी तो कुछ शर्म। ऐसे माधव के सामने आना अब उसे ऑकवर्ड महसूस करवाने लगा था और शायद माधव ये भांप गया था। उसने एक आखिरी कोशिश की, किस्मत आपको यहाँ तक ले ही आई है तो चलकर और कुछ नहीं तो मेरा रेस्टोरेंट ही देख लीजिए, चिंता मत कीजिए। अगर आपका मन नहीं है तो कुछ खाने पीने नहीं कहूँगा मैं, बस यहाँ बरसात में खड़ी होने के बजाय अंदर आराम से बैठकर बारिश के थमने का इंतज़ार कर लीजिए, भीगी हुई भी हैं आप, ऐसे यहाँ खड़ी रहेंगी तो तबीयत भी खराब हो सकती है। माधव की विनम्रता से किए इस आग्रह को राधिका चाहकर भी ठुकरा न सकी, कहीं बार बार इनकार करने पर वो बुरा न मान जाए। उसने ग्लास डोर से होते हुए एक सरसरी नज़र अंदर डाली। बहुत भीड़ है यहाँ तो। जी वो लंच टाइम है ना, इस वक्त थोड़ा रश रहता ही है और बाहर बारिश हो रही है, इस वजह से आज भीड़ ज़्यादा है। आप चलिए मेरे कैबिन में चलकर आराम से बैठिए। राधिका कुछ पल सोच में पड़ गई, फिर झिझकते हुए उसने हामी भर दी, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं बस अभी आया। राधिका पलटकर कुछ कह पाती या उसे रोक पाती उससे पहले ही माधव अपने कैबिन से बाहर निकल गया। राधिका कुछ पल परेशान सी उस बंद दरवाजे को देखती रही जहाँ से माधव गया था, फिर सर घुमाकर उस कैबिन को देखने लगी। ज्यादा बड़ा नहीं था पर ज्यादा छोटा भी नहीं था। एक तरफ दीवार से लगकर बुकशेल्फ लगी थी जिसमें कुछ फाइलें रखी थी, एक टेबल था जिस पर एक सिस्टम और कुछ और चीजें रखी थी, साथ में इजी चेयर भी लगी थी, डबल सीटर सोफा लगा हुआ था। साधारण तरीके से सजा साफ सुथरा सा कैबिन था। जाते जाते माधव हीटर ऑन कर गया था जिससे हल्की गर्माहट भी महसूस हो रही थी। राधिका ने पूरे कैबिन में नजरें घुमाई, फिर अपना पर्स सोफे पर रख दिया और अपने हाथ की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए परेशान सी माधव के लौटने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद हाथ में एक ट्रे थामे माधव ने वापस केबिन में कदम रखा और राधिका को यूं खड़ा देखकर चौंक गया, अरे आप अब तक खड़ी क्यों हैं, बिना किसी झिझक संकोच के आराम से बैठ जाइए। राधिका ने झिझकते हुए इनकार में सर हिला दिया, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, कपड़े भीगे हैं मेरे, आपका सोफा भीग जाएगा, आप इसे पकड़िए। माधव ने ट्रे उसकी ओर बढ़ाई तो राधिका ना समझी से उसे पकने लगी, मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया फिर आप ये चाय मुझे क्यों दे रहे हैं, ये मेरे तरफ से है आपके लिए, आप पकड़िए तो सही, मैं अभी आपके बैठने का इंतजाम कर देता हूँ। राधिका ने असमंजस भरी निगाहों से उसे देखते हुए ट्रे थाम ली। माधव ने साइड में रखी प्लास्टिक की चेयर लाकर लगा दी और मुस्कुराते हुए बोला, अब तो कुछ गीला नहीं होगा तो आराम से बैठिए। राधिका झिझकते हुए चेयर पर बैठ गई, फिर परेशान निगाहों से उसे देखते हुए बोली, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। राधिका की बात सुनकर माधव सहजता से मुस्कुरा दिया, जरूरत तो थी, आप पहली बार यहाँ आई हैं, इतनी खातिरदारी तो बनती है आपकी, अब संकोच को त्याग दीजिए और चाय पीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। आप सिर्फ एक ही कप क्यों लाए हैं, आप बैठेंगी और मैं अकेली पीऊंगी, ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। माधव ने राधिका को उलझन में डाल दिया था और अब उसे शिद्दत से अंदर आने के अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। आप पीजिए ना, मैं तो पीता ही रहता हूँ, अभी आप भीगी हुई हैं तो आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। बेचारी अजीब फंसी थी, पीते भी नहीं बन रहा था और इनकार भी नहीं कर पा रही थी, उसने किसी तरह एक घूंट ली, रेस्टोरेंट तो काफी अच्छा है आपका और मैनेज भी अच्छे से किया हुआ है आपने, एटमॉस्फेयर भी ऐसा है कि इंसान बार बार आए। उनके दरमियान फैली अजीब सी खामोशी को तोड़ते हुए इस बार बात की शुरुआत राधिका ने की थी। उससे तारीफ सुनकर माधव फीका सा मुस्कुरा दिया, थैंक यू पर अभी पूरी तरह से मेरा हुआ नहीं है। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। राधिका उलझन भरी निगाहों से कन्फ्यूज सी उसे तकने लगी, वो बैंक से लोन लिया हुआ है जिसकी किस्त हर महीने जाती है, तो अभी रेस्टोरेंट पूरी तरह से मेरा हुआ नहीं है। ओह पर आपका काम ठीक चल रहा है तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। बस यही उम्मीद है कि काम ठीक ही चलता रहे तो जिंदगी कुछ आसान हो जाएगी। बिल्कुल, आपने इतनी मेहनत की है तो भगवान आपको सफलता जरूर देंगे। राधिका की बात सुनकर माधव मुस्कुरा दिया। बात खत्म हुई और एक बार फिर अजीब सा सन्नाटा उनके दरमियान पैर पसारने लगा। दोनों ही कुछ हिचक रहे थे, शायद समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बात करें। वैसे इंतजार किया था मैंने आपका, पर आप आई नहीं। कुछ देर की खामोशी के बाद माधव ने सामान्य अंदाज में ये बात कही, पर राधिका को लगा जैसे शिकायत कर रहा है और उसने तुरंत ही सफाई पेश कर दी। बस वक्त नहीं मिला आने का। वक्त मिलता नहीं, निकालना पड़ता है, माधव ने बेहद संजीदगी से कहा, जिस पर पल भर को राधिका अचकचा गई। फिर संभलते हुए बात टालने की गरज से जवाब दिया, जिंदगी में कुछ परेशानियां चल रही थी, बस उसी में मसरूफ थी, जॉब घर की जिम्मेदारियों के बीच ध्यान ही नहीं रहा आना। कोई बात नहीं, आपको वक्त नहीं मिला, पर देखिए किस्मत ने आपको यहाँ तक पहुँचा ही दिया। माधव ने मुस्कुराते हुए अपनी खुशी जाहिर की और जवाब में राधिका भी फीका सा मुस्कुरा दी। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी आप, माधव ने झिझकते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर राधिका ने गंभीर भाव के साथ लापरवाही भरे अंदाज में जवाब दिया, अगर बुरा मानने लायक हुई तो जरूर मानूंगी बुरा। माधव आश्चर्य से उसका चेहरा देखने लगा, वो ही राधिका उसका रिएक्शन देखकर मुस्कुरा दी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैंने आपसे हुई बीती तीन मुलाकातों में गौर किया कि आप सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र भी नहीं पहनती, बुरा मत मानिएगा, मैंने बस अजीब लगा तो यूं ही पूछ लिया। अब भी माधव कुछ हिचकिचा रहा था, सवाल पूछने के साथ उसने माफी भी मांगी, पर उसके उस सवाल ने राधिका का मूड खराब कर दिया। अब एक सवाल मैं आपसे करती हूँ, राधिका इतना कहकर पल भर को ठहरी। माधव सवालिया निगाहों से उसे तकने लगा। राधिका ने उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए गंभीरता से आगे कहना शुरू किया, मैंने कभी किसी मर्द को तो नहीं देखा कि मांग में सिंदूर भरकर या गले में मंगलसूत्र पहनकर दुनिया भर के लोगों को अपने शादीशुदा होने का सबूत देता फिरे। फिर औरतों पर यह बंदिश क्यों कि शादी हो गई है तो सोलह श्रृंगार करके घूमें, मांग भर भर कर सिंदूर लगाएं, गले में मंगलसूत्र टांग कर रखें, हाथ भर भर कर चूड़ियां पहने। आप मर्द तो शादी के बाद भी पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं, पर हम औरतों को इन रीतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? हमें इतनी आज़ादी क्यों नहीं कि जैसे चाहे वैसे रह सके? हमसे ये उम्मीद क्यों रखी जाती है कि इस पुरुष प्रधान समाज की दखियानोसी सोच और पिछली मानसिकता की बेड़ियों में बंधे उनकी बनाई रीति रिवाजों को आंख बंद करके निभाते रहें?
माधव समझ ही नहीं सका कि राधिका अचानक इतनी नाराज क्यों हो गई। वो पल भर चकित सा उसे देखता ही रह गया। लगता है आपको मेरा वो सवाल पूछना पसंद नहीं आया, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, क्योंकि आमतौर पर लड़की कितनी ही मॉडर्न हो पर हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी में शादी के बाद लड़की सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती ही है। वो उनकी चॉइस होनी चाहिए, ना कि मजबूरी। जमाना बदल रहा है, इसके साथ हमें अपनी सोच भी बदलने की ज़रूरत है। अब वो वक्त नहीं रहा जब औरतें मांग भर भर कर सिंदूर लगाया करती थीं, एक हाथ का मंगलसूत्र गले में लटकाए दुनिया भर को ये जताती रहती थीं कि अब वो विवाहित हैं। अब वो घर की चार दीवारियों में कैद नहीं रहती। वक्त के साथ माहौल, उनके रहन सहन, प्राथमिकताओं में भी बदलाव आया है। अब वो बाहर निकलती हैं, लोगों से मिलती हैं, तो प्रेजेंटेबल भी लगना होता है। अगर लड़की की इच्छा है और वो कंफर्टेबल है तो वो सिंदूर लगा सकती है, मंगलसूत्र पहन सकती है, और अगर वो नहीं चाहती तो उसे आज़ादी मिलनी चाहिए अपने हिसाब से रहने की, जैसे आप मर्दों को मिलती है। वैसे भी शादी का रिश्ता सिंदूर या मंगलसूत्र का मोहताज नहीं होता, वो दिलों का बंधन है। अगर दिल जुड़े हैं तो इन बनावटी दिखावों की कोई ज़रूरत नहीं होती, और अगर दिलों में दूरियां हैं तो इन सब दिखावों का कोई मतलब ही नहीं। पता नहीं ये रोष, गुस्सा और नाराज़गी किस बात की थी जिसे आज राधिका ने माधव पर उतार दिया था। हालांकि वो पूरी तरह से गलत नहीं थी, पर माधव ये समझने में असमर्थ था कि उसने ऐसा क्या गलत कहा कि राधिका इस कदर खफा हो गई। आप नाराज़ हो गईं क्या? माधव ने उलझन भरी निगाहों से उसे देखते हुए सवाल किया। राधिका, जिसके चेहरे पर अब भी गुस्सा साफ छलक रहा था, उसने गहरी सांस भरी और इनकार में सर हिला दिया। नहीं, मेरा आपसे ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं कि आपसे नाराज हो सकूं। हाँ, कहीं और का गुस्सा मैंने आप पर उतार दिया और आपको बेवजह इतना कुछ सुना दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूंगी। राधिका को माधव के एक्सप्रेशन देखकर अपनी गलती का एहसास हो गया था, सो बिना झिझक उसने उससे माफ़ी मांग ली। एक बार फिर उनके दरमियान अजीब सा सन्नाटा पसर गया, जिसे चीरते हुए माधव की आवाज़ राधिका के कानों से टकराई। और बताइए, आपके पति और परिवार में सब कैसे हैं? बात का रुख बदल गया था उसने। पति का जिक्र सुनते ही एक साया सा राधिका के चेहरे को छूकर गुजर गया। अगले ही पल संभलते हुए वो फीका सा मुस्कुरा दी। सब अच्छे हैं। बच्चे भी हैं आपके? नहीं। अच्छा, और आपके मायके वाली फैमिली में सब कैसे हैं? वहाँ भी सब अच्छे हैं? आपकी बहनों की शादी हो गई? जी, बस छोटी वाली रहती है, अभी पढ़ रही है वो।
ये तो बहुत अच्छा है। आपकी सारी बहनें सेटल हो गईं, आपके मम्मी पापा तो अब निश्चिंत होंगे।
जी, औपचारिकता निभाते हुए दोनों ने कुछ बातें की, फिर बारिश थमी तो राधिका ने जाने की इजाज़त मांगी। यहाँ एक पल भी रुकना अब उसके लिए मुमकिन नहीं था, तो जल्दी से जल्दी बस निकलने की फिराक में थी। माधव के पास भी अब कहने सुनने को कुछ नहीं था, तो उसने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की।
कभी वक्त निकाल कर आइएगा अपनी फैमिली के साथ, इसी बहाने मुझे भी आपके पति से मिलने का मौका मिल जाएगा।
जी बिल्कुल, फीकी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए उसने बेमन से हामी भरी और बाहर निकल गई। पीछे खड़ा माधव अजीब सी उदासी उन आँखों में कैद किए उसे खुद से दूर जाते हुए देखता रहा।